नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेल्ले से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा, ताकि कृषि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।